أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری بحث شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 20 گفتار میں چل رہی ہے. آج جو عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے عقل و دل. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کی روح میں دو مرکز موجود ہیں، ان میں سے ایک عقل ہے اور دوسرا دل. عقل کا کام فکر، منطق، استدلال، علم، فلسفہ، یہ سب اس کی تجلیات میں سے ہیں، اور خواہشات، چاہنا، آرزو، امید، یہ سب چیزیں دل کے ساتھ مربوط ہیں. وہ شخص کہ جو امید نہ رکھتا ہو، آرزو نہ رکھتا ہو، خواہشات نہ رکھتا ہو، وہ انسان ایک مردہ انسان شمار ہوتا ہے، موت کے نزدیک ہے تقریباً. وہ انسان جامد و سرد و ٹھنڈا مزاج ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں نظر آئے گی، وہ کوئی فعالیت، ایکٹیویٹی انجام نہیں دے گا. اور وہ شخص کہ جو عقل کی قوت سے، فکر کی قوت سے محروم ہو، تدبیر کی قوت سے محروم ہو، شہید فرماتے ہیں یہ اس گاڑی کی طرح ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں چل تو رہی ہے لیکن اس میں چراغ، اس میں روشنی و لائٹ موجود نہیں ہے. بس عقل و دل دونوں چیزیں انسان کی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہیں. بعض اوقات عقل و دل ہر دو متفق ہوتے ہیں، یعنی جو چیز دل کو پسند آتی ہے عقل اس کی خوبی کی تصدیق کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے عقل جس خوبی کو درک کرتی ہے، تصدیق کر دیتی ہے اس کے اچھے ہونے کا، تو دل کو بھی وہ چیز پسند آ جاتی ہے. یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی بھی آپس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، انسان شبہ، اشکال، سوال میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ عقل اور دل میں فرق آ جاتا ہے. جو چیز عقل درک کر رہی ہوتی ہے اور اس کی اچھائی کو درک کر رہی ہوتی ہے یا اس کی بدی کو درک کر رہی ہوتی ہے، دل اس کے خلاف چاہ رہا ہوتا ہے. مثلا اگر عقل نے ایک چیز کی خوبی کو درک و تصدیق کر دی تو دل کو یہ چیز پسند نہیں آتی، اور اسی طرح بالعکس بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر پھر عقل اور دل کا نزاع و جنگ شروع ہوتی ہے. اب اس جگہ پر بعض ایسے افراد ہیں کہ جو دل کی بات مانتے ہیں، بعض ایسے افراد ہیں جو عقل کی بات مانتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ ہے تربیت اولاد میں. تربیت اولاد اگر کرنا چاہے والدین، اور جو کہ کرتے بھی ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں پر تربیت اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچہ والدین سے دور ہو جائے. یعنی کسی جگہ پر اچھا ماحول مل گیا پڑھائی کے لیے، تربیت کے لیے، تو اس کو وہاں پر بھیجنا ضروری ہے، وہ وہاں پر جائے، پڑھے، تربیت حاصل کرے اور پھر واپس آئے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو والدین سے دور جانا چاہیے چونکہ تربیت کا معاملہ ہے، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ میری اولاد ہے لہٰذا اس کو مجھ سے دور نہیں ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ دور نہ جائے. تو اب یہاں پر اگر انسان و والدین دل کی بات مانیں گے تو بچہ تربیت سے محروم ہو رہ جائے گا، لیکن اگر عقل کی بات مانیں گے تو انسان، وہ بچہ جو ہے وہ تربیت پا جائے گا اور اپنی زندگی سنوار لے گا. اس طریقے سے آپ اور بھی میدانوں میں مثالیں सोच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अगर दिक्कत करें तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि जहाँ पर अक्ल और दिल के अंदर जो है वो जुदाई आ जाती है और वहाँ पर इंसान को फ़ैसला करना होता है कि किसका साथ देना है। एक और बड़ी मिसाल के जो हर इंसान के लिए है वो तहजीब नफ्स के अंदर है, क्योंकि नफ्स को पाक रखना, उसकी तहजीब करना, ये हर इंसान का फरीज़ा है। तो अब जब इंसान इस तहजीब नफ्स के रास्ते पर चलता है तो यही चीज़ें जो हैं वो आड़े आ जाती हैं, यानी अक्ल और दिल का जुदा हो जाना। अक्ल ये कह रही होती है कि तहजीब नफ्स ज़रूरी है, आप तहजीब नफ्स करो, लेकिन दिल की ख्वाहिशात ये कह रही होती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने हतमन ये अंजाम देना है। तो यहाँ पर इंसान जो है इस कश्मकश में मुबतला रहता है। इसी वजह से पैगंबर ने इस कश्मकश को जिहाद का नाम दिया है, लेकिन ये जिहाद भी जिहाद अकबर है, जिहाद असगर भी नहीं है। तलवारों से लड़ना, बंदूकों से लड़ना, मैदान के अंदर जाकर लड़ना, ये भी मुश्किल है, मैदान जंग में जाकर लड़ना, लेकिन इसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद असगर का नाम दिया है, यानी छोटा जिहाद है तहजीब नफ्स के मुकाबिल में, और तहजीब नफ्स को जिहाद अकबर का नाम दिया है। चूंकि यहां पर जब इंसान इस कश्मकश में मुबतला हो जाता है तो फैसला करना इतना आसान नहीं होता। शेख मुतारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यह कश्मकश होती है अक्ल और दिल की, तो यहाँ पर बाज़ औक़ात अक्ल तस्खीर कर लेती है दिल को, और बाज़ औक़ात दिल जो है वो असीर कर लेता है अक्ल को। तो शेख फरमाते हैं कि अक्ल तस्खीर करती है दिल को, ये तो मतलब वाज़े है हर इंसान के लिए, समझना इसको मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है इस मर्तबे की कि जब दिल आकर अक्ल को असीर कर लेता है, ये कैसे मुमकिन है, इसको किस तरीके से दिल जो है वो अंजाम देता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा दिक्कत करे तो उसको ये मतलब मिलेगा कि इंसान के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात मौजूद हैं, शहवात इसी में मौजूद हैं, और ये जब तुगयान कर जाती हैं, यानी हद से तजावुज़ कर जाती हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो हवाओ हवस की जंजीरें अकल को असीर कर लेती हैं। यानी जब दिल की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं हद से, अकल अपनी उस कुव्वत में, उस कजावत के अंदर के जो उसने करना होता है, अदालत जो बरकरार करनी होती है, जो हुक्म लगाना होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, इसमें ज़ईफ़ हो जाती है। तो जब ये शहवात हद से तजावुज कर जाती हैं और अकल जो है वो अपनी कुव्वत हुक्म में ज़ईफ़ हो जाती है, तो उस वक्त अकल भी शहवत वाली चीज़ को अच्छा कहने लग जाती है, यानी इंसान फिर उस बदी को बदी तसव्वुर नहीं करता। यहाँ पर आकर अकल इंसान असीर हो जाती है शहवात की, दिल की, के शहवात का, चाहने का, ना चाहने का जो मरकज है वो दिल है। अकल जब असीर हो जाती है तो इंसान जो है फिर वो हर किस्म की जो है वो बदी को अंजाम देता है, लेकिन उसको अच्छा समझ रहा होता है, और अकल के अंदर भी ये कुव्वत मौजूद नहीं होती कि वो उसको ये समझा सके कि ये चीज़ बुरी है। इसी वजह से आप देखें कि इंसान अपने आप को जब देखता है तो खुशबीनी में मुबतला होता है, यानी अपने बारे में हुस्ने ज़न रखता है, अपने बारे में ये तसव्वुर करता है कि मैंने जो दर किया, जो समझा वो सही है, मेरे आमाल जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जब दूसरों की तरफ निगाह करता है तो बदबीनी की निगाह करता है, यानी सुए जन करता है। तो जब ये सूरत हाल बाकी रहेगी तो हतमन मुआशरा जो है वो हर्ज मर्ज का शिकार हो जाएगा, ये मुआशरा कभी इस्लाह नहीं पा सकता, इसमें कभी भी अच्छाई नहीं आ सकती, ये मुआशरा कभी भी मुतआदिल नहीं हो सकता। और एक और असर जो सामने आएगा वो ये कि इंसान चूंकि अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराएगा, चूंकि अपने बारे में हुस्ने ज़न का शिकार है और दूसरों के बारे में सुए ज़न का शिकार है, तो अपनी खामियों को कभी देख नहीं पाएगा और अपनी फिर कभी इसलाह भी नहीं कर पाएगा। इसलाह तब होती है कि जब इंसान अपनी निस्बत बदबीन हो जाए, अपने बारे में सुए ज़न करे, अपने आमाल को शक की निगाह से देखे, उस वक्त इंसान जो है वो तहजीब के मरहले में वारिद होता है और फिर इससे मुआशरे ठीक होते हैं। अब मसला ये है कि इस शहवत की असीरी से अक्ल को कैसे निकाला जाए, तआदुल कैसे बरकरार किया जाए कि अक्ल की हाकमियत रहे, तो उसका राय हल यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तफक्कुर व तअक्कुल को ज़्यादा करे, हर मुआमले में तफक्कुर व तदब्बुर करे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर कहा कि हमें नसीहत करें। पैगंबर ने तीन मरतबा फरमाया कि आयात जो मैं कहूँगा उस पर अमल करोगे, उसने जवाब दिया मैं करूँगा। तो पैगंबर ने यूं कहा, इज़ा हममत बिअम्रिन, अगर और जब तुमने किसी चीज़ के या किसी अम्र का आज़म कर लिया, इरादा कर लिया पुख्ता, फतदब्बर आक़िबतहु, तो उसकी आक़िबत अंदेशी के अंदर तदब्बुर करो, फ़िक्र करो, उसके अंजाम को परखो कि ये इंजाम के अंदर मेरे लिए क्या साबित होगा, ये आमर अच्छा है या बुरा है। तो इंसान जितना तदब्बुर और तफक्कुर को अपनी ज़िंदगी में राइज करेगा, इंसान उतना अक्ल की हाकमियत को बरकरार रखेगा और अपने दिल की जो ख्वाहिशात हैं उस पर कंट्रोल कर पाएगा। और अगर अक्ल की हाकमियत बरकरार रही तो इंसान अपनी आकलाना ज़िंदगी गुजारेगा और कभी अपने अमल में ख़ता नहीं करेगा। बस नतीजा ये निकला कि इंसान को मंतिक व इस्तिदलाल व अक्ल की पैरवी करनी है, एहसासात की नहीं, चूंकि एहसासात का ताल्लुक दिल से है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।